ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಸಭಿ ಬಾಬಾ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ, ಜಿನ್ಕೊ ಬಾಬಾ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಶೃಂಗಾರ ಕರ್ತೆ ರಹತೆ, ज्ञान की मीठी मीठी बातें कहो सुना करके हमें ये जीवन जीना सिखा देते हैं. आज के महावाक्यों में भी अगर बाबा की बात को देखें तो बाबा ने जीवन जीने की एक बहुत सहज सुंदर विधि सुनाई. छोड़ो तो छूटो. हम क्यों नहीं आगे पढ़ पाते उसका कारण बाबा ने समझा दिया. पकड़ा हुआ है. पंछी अगर डाल को पकड़े रखेगा तो उड़ेगा कैसे? इसलिए छोड़ो तो छूटो. दूसरी एक बहुत मीठी बात बाबा ने कही कि बच्चे, अगर आप सदा उदाहरण मूरत, तो बाबा ने कहा आपको देखने वाले बहुत हैं, आप अगर उदाहरण बन जाते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं तो आपको देखने वाले बहुत हैं, फॉलो करने वाले बहुत हैं. तो जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे. मैं कौन से कर्म कर रहा हूं? हम बाबा के घर में आते हैं तो हमारे को देखने वाली कई आंखें होती हैं, दिखाई नहीं पड़ता हमें. देखने के लिए तो हमें ये 2-4-10 जने ही दिखाई दे रहे हैं कि यही देख रहे हैं, पर बहुत सी आंखें आपको दिखाई नहीं दे रही, वो आपको देख रहे हैं. आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे ज्ञान और योग को आपने अपने जीवन में साधा है या सिर्फ सुना है, सिर्फ वर्णन है या अंदर में है? देखने वाले बहुत देख रहे हैं. जिसके लिए मैं आपको कहूं कि हमारी जब बड़ी दीदी थी, जिनको हम प्यार से दीदी मनमोहिनी, उनको बड़ी दीदी कहते थे, तो बड़ी दीदी हमेशा एक बात कहती थी कि सामने तो आपके 2-4-10 लोग हैं, लेकिन याद रखो आप सदा विश्व के स्टेज पर. चारों तरफ देखने वाले हैं. मेरा इंटरेस्ट ज्ञान योग में है या नहीं तो मुझे देखने वालों का भी कैसा होगा फिर? तो मुझे याद आता है कभी कभी जब हम छोटे थे तो हम कभी कभी बोल दिया करते थे दीदी को, हमें क्लास में नहीं जाना है. बच्चे थे, दीदी बोलती थी क्लास में जाओ, हम बोलते थे नहीं जाना है, खेलना है, क्लास में नहीं जाना है. तो दीदी कई बार कहती थी हंसी हंसी में, देखो बच्चे आप, बुड्ढे हम, लेकिन मैं कहती हूं मैं बच्चे तुम बुड्ढे. क्यों क्यों? मैं पढ़ती हूँ, क्लास में जाती हूँ, दीदी कहती थी मैं क्लास में जाती हूँ पढ़ती हूँ, और तुम स्टूडेंट हो और क्लास से दूर भागते हो तो बुड्ढे हो, इसलिए क्लास में जाओ. अगर बच्चे हो तो बच्चों का काम तो पढ़ना है, क्लास में जाओ. बहुत छोटी छोटी बातें कह कह कर उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया. क्योंकि मुझे तो याद आता, आज भी बात हो रही थी तो मुझे तो याद आता कि हमने जो कुछ सीखा है इसी आंगन से सीखा है. मेरा तो घर भी यही रहा, ये कहूंगी मेरी खुश नसीबी थी, हम इसी घर में पले बड़े, आगे बढ़े, जो भी सीखा इन्हीं हमारे पुराने भाई बहनों के हाथों में खेले. जो भी बहुत पुराने पुराने भाई बहनें। छोटी सी उम्र में, मैं समझती हूँ मेरी उम्र केवल 3 साल की थी जब मैं यहाँ पर बड़ी दीदी के पास 3 महीने बाबा के पास, तब तो बाबा थे, 3 महीने 3 साल का बच्चा, सोचिए। और उसमें ही, उस उम्र से लेकर हमने एक तरह से ज्ञान योग की पालना सीखी मिली। मुझे याद आता है एक बार हमने मनोहर दादी से पूछा था, दादी आप सबको योग सिखाती हो, क्योंकि दादी योग शिविर की भी टीचर थी, मुझे भी योग सिखाओ, मुझे योग नहीं आता। बोलते तुम तो यही सीखे ना, तुम्हें तो आता है योग, तुम कैसे योग लगाती हो मुझे पहले बताओ, दादी बोली। तो हमने छोटी सी बात उनके आगे रखी जो हमें मालूम था, और वो क्या मालूम था, जो बहनों ने पक्का कराया था, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा ज्योति बिंदु हूं, परम धाम से आई हूं, पार्ट बजाने आई हूं, खत्म, अब क्या करूं। खत्म। मुझे याद आता है वो दादियां, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये तो छोटे बच्चे हैं, इनसे हमें क्या बात करनी, इनको क्या सिखाना है। दादी मुझे बोली, अच्छा मैं फला टाइम पे फ्री होंगी तो माना, उस समय मैं योग करती हूँ। आप सोचिए आप बच्चे को कह रहे हैं, तब मेरी उम्र मुश्किल से 6-7 साल। आना मैं सिखाएंगी, उनकी भाषा में बोलती थी सिखाएंगी, मैं सिखाएंगी तुमको योग करना सिखाएंगी। फिर जब हम दादी के पास सीखने के लिए गए, हमने दूसरा सवाल योग के साथ साथ ही पूछ लिया कि दादी उस समय, फिर ये भी होता ना बच्चों को कि हाँ हमें तो आता है, बस मैं आपको देखूं आप मुझे देखो, हो गया योग, यही तो योग है ना, मैं आपको देखूं आप मुझे देखो। दादी ने मुझे 2 शब्दों में योग सिखाया, अभी भी मुझे याद आती है कभी कभी उनकी वो मीठी सी बात कि योग क्या है। बाबा से आपका प्यार है, बस बाबा के आगे बैठो और बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बाबा मैं आपकी हूं, आप मेरे हो, मुझे अपना बना के रखना, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, बस ये बात बाबा को कहते रहना, देखो बाबा कितनी शक्ति दे। उस उम्र में तो कहने का भावार्थ ये है कि अगर हम बाबा के एक एक महावाक्यों पर अपने अंदर मनन करते हैं, चिंतन में लाते हैं, तो वो छोटी छोटी बातें हमारे लिए खुशी का साधन बन जाती है, शक्ति का साधन बन जाती है, क्योंकि ज्ञान की कोई भी बात छोटी नहीं होती। हमें दूर से लगता है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। जब तक जीवन में हमने उतारा नहीं, तो प्राप्ति में है नहीं। इसलिए जब आज भी बाबा के महावाक्य सुन रहे थे, तो संकल्प में आ रहा था, बाबा ने कह दिया है, कुछ तो मेरे मोहिनी मूरत को देखकर बन गए, कुछ ज्ञान गंगाओं को देखकर बने, हम किसमें हैं? हम अपने अंदर देखें। भले आप कहोगे कि हमने तो बाबा को नहीं देखा, दादियों को भी देख तो रहे ना, दादियां तो हैं आज भी, ये भी भाग्य है हमारा, कल आने वाले भाई बहनों का ये भी भाग्य नहीं होगा। आज हमारा ये भाग्य इस बाबा के घर में है, फाउंडेशन है, जो इस घर में है मना फाउंडेशन, ये बाबा का तपस्या का स्थान है, यज्ञ का आधार कुंड है ये, इसका महत्व कम नहीं है। हम यहां बैठे हैं माना हमें अनेक फॉलो करने वाले हैं, हम फाउंडेशन। एक और आपको बात सुनाती हूं बड़ी दीदी की। छोटे थे तो कई बार ऐसा होता था कि खाने में कई सब्जियां अच्छी नहीं लगती थी, बच्चों को होता ही, ये सब्जी नहीं खानी, ये सब्जी नहीं खानी। तो मुझे याद आता है उस समय यज्ञ में भोली दादी हुआ करती थी, दीदी हमेशा कहा करती थी इसके लिए आलू की सब्जी बना के रखना, आलू खाएंगे। मेरे को नहीं कहती थी दीदी, उनको कहती थी, और वो मुझे बुला बुला कर सब्जी देती थी, तेरे लिए खास बनाई, तेरे लिए सब्जी बनाई। और दीदी मुझे क्या कहती थी, दीदी मुझे सिखाती थी मुट्ठी, दीदी का ये फेवरेट शब्द था बोलने का, सब्जी नहीं खाएगी तो बुद्धि में ज्ञान नहीं चलेगा। क्यों बताइए क्यों, आप सोच नहीं सकते हो दीदी का जो कहने का था, ये ज्ञान नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में शरीर को भोजन नहीं मिला ना, तो फिर रोना आएगा, रूठना आएगा, मुंह बनेगा, चिड़चिड़ करेंगे, फिर खेलेंगे नहीं, सबसे बात नहीं करेंगे, तो ज्ञान कहाँ चला। हम कैसे कौन सी बात बच्चों को सिखा रहे हैं। इसलिए तुम बाबा के घर में बैठी हो, माना छोटे हो तो ऐसे नहीं सोचो छोटे हैं, योगी हैं, योगी सब खाता है। बाबा के घर में माना योगी हैं, योगी सब खाता है, जो मिल जाए वो खाता है, जो मिल जाए, थाली में जो ले लिया तो करना है पूरा। ब्रह्मा भोजन का कण भी ना जाए, वो दीदी ने उस समय पक्का कराया था, कण भी ना जाए। क्योंकि अगर हमारे अंदर वेस्टेज के संस्कार हैं, चाहे वो भोजन है, चाहे फिर चीजें हैं, चाहे वो समय है, दीदी तो साथ में समय बहुत जोड़ा करती थी, चीजें भी वेस्ट करेगा, खाना भी वेस्ट करेगा, टाइम भी वेस्ट करेगा। और हमारे लिए ये कहेंगे ब्राह्मण जीवन में ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है ना। हमारा टाइम वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। और अगर मेरा समय जाता तो फिर हमारे पास ये अभ्यास का मेरा समय चला गया, तो फिर कल हमारे पास वो वक्त नहीं होगा जिसमें हम अभ्यास कर पाए, और फिर हम खुद अपने लिए कहेंगे हमारा लाइफ ऐसे ही चला गया, कुछ पाया नहीं। इसलिए हमारा वेस्टेज ना हो। इस घर में मैं ये कहूं, मुझे याद आता है कि हर 1.5-2 महीने बाद मैं बाबा के घर में हुआ करती थी। पहली बार जब आई थी तब मेरी 2.5 साल की उम्र थी, 2.5 साल की उम्र थी जब पहली बार आए थे। हमारे 1.5 साल की आयु में थी मैं तब माँ बाप ज्ञान में आए, और 2.5 साल की उम्र में पहली बार बाबा के घर में आई। और आपको एक और बात सुनाते हैं, आज जो सुबह भी क्लास में निकली थी कि जब मैं आई थी पहली बार जब आई थी, तो ये भी मेरा भाग्य था कि बाबा ने नाम चंद्रकला दिया, ये मेरा भाग्य था। पहली बार पूछा बाबा ने क्या नाम है, तो पेरेंट्स ने नाम बता दिया। बाबा ने कहा इसके अनुकूल नहीं है, ये नाम जो आपने रखे वो इसके लिए नहीं है, बाबा नाम देंगे। और तब बाबा ने यज्ञ में, जहां तक मुझे मालूम है, मैं ही एक बच्चा थी जिसकी छठी मनाई थी, और नामकरण छठी मना जन्म का वो जिस दिन नाम देते नामकरण संस्कार, उसको नाम दिया था। तब से ही नाम प्रचलित भी हो गया और तब से ही बाबा और बड़ी दीदी की पालना बहुत मिली। बड़ी दीदी के लिए तो मैं आपको कहूंगी कि दीदी हमेशा कहा करती थी, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। और मुझे अक्सर करके कमरा दीदी के पीछे वाला मिलता था। अगर मैं भाइयों को बताऊं, मधुबन वालों को, तो जमुना दादी का जो कमरा था उसमें मैं रहा करती थी दीदी के, और उसके बीच में एक पर्दा था। दीदी बार बार उठा के जब भी आती थी तब देखती थी मैं क्या कर रही हूं, मैंने खाना खाया, मैं कहां कहां गई। दीदी की नजर पूरी होती थी क्योंकि मैं अकेली रहती थी। तो दीदी हमेशा कहा करती थी कि आपके हाथ में हमेशा मुझे डायरी दिखनी चाहिए। और तब तो मतलब ही नहीं था डायरी पेन, क्या मतलब था। तो दीदी यही इधर बीच में कुर्सी पे बैठा करती थी, मुझे यहां बिठाती थी और कहती थी पॉइंट्स लिखो। अब दीदी एकदम ऊपर, मैं नीचे, दीदी की डायरी पे यूं नजर रहती थी क्या लिखते, तो लिखना भी ठीक पड़ेगा। तो कभी कभी देखती थी दीदी का ध्यान नहीं है तो फूल पत्ती। तो दीदी बोलती थी नहीं, पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स दीदी देखेगी, दीदी मार्क्स देगी। ये तो और मुसीबत हो गई, मार्क्स देगी, अब और भी ठीक से लिखना पड़ेगा। तो मुझे याद है दीदी ने मुझे ज्ञान की पॉइंट्स, मुरली में से पॉइंट्स निकालनी सिखाई, कि ज्ञान की पॉइंट्स अलग लिखनी है मुरली की, योग की पॉइंट्स अलग लिखनी है। दीदी ने मेरी डायरी में से चार हिस्से करवाए कि एक पहले हिस्से में ज्ञान की पॉइंट्स लिखनी है, दूसरे हिस्से में योग की पॉइंट्स लिखनी है, तीसरे हिस्से में धारणा की पॉइंट्स लिखनी है, चौथे हिस्से में सेवा के बारे में लिखना है। और उसमें भी रोज की डेट, सेवा भी रोज आएगा ना मुरली में, तो रोज की डेट डाल के लिखनी है। और जब पेज भर जाए, पहला पेज जो भी ज्ञान का योग का पेज भर जाए, उस पेज में से रोज फिर मतलब पेज भरने के बाद देखना है कि इनमें से मैं कोई सेवा कर पा रही हूँ या नहीं, इसमें से योग में मैं कितना क्या कर रही हूँ, ज्ञान में मेरे को कितनी स्पष्टता आ गई है, कितना समझ आया है। बोला करती थी दीदी कि ऐसे ऐसे निकालो। और वहीं से दीदी ने मुरली के नोट्स लेते लेते मुझे प्रदर्शनी समझाना भी दीदी ने सिखाया, उन्हीं मुरली की पॉइंट्स में से, कि अच्छा मुरली की पॉइंट्स निकाल ली, अच्छा जब आत्मा का चित्र आएगा ना तो ये आत्मा की बात लिखी है ये उस पे सुनाना, और ये परमात्मा सर्वव्यापी की बात लिखी ना ये दूसरा चित्र आएगा उस पे सुनाना। फिर ऐसे ऐसे करके दीदी ने ये यहां पर जो नक्की के पास म्यूजियम है, दादा आनंद किशोर के साथ मुझे भेजा करते थे जो प्रदर्शनी समझाने, रोज जाना है प्रदर्शनी समझाने के लिए। और जब रात को आना है तो दीदी पूछती थी आज कितने ग्रुप्स लिए, समझाया किसी को या नहीं समझाया, ये भी रोज का हिसाब देते थे। और फिर ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो हो गया पूरा, दादा आनंद किशोर से दीदी पूछा कर, दीदी ग्रुप्स लिए, समझाया, ठीक समझाया, तुम इनके पीछे पीछे चक्कर लगाया करो, ठीक समझाती। तो रोज समझाना है, कम से कम तीन या चार ग्रुप्स लेने ही लेने। और दीदी तो फिर ये कहा करती थी जब मैं घर में आती थी, अच्छा तीन ग्रुप्स लिए, चार ग्रुप्स लिए तो ठीक, तो पास, दो ग्रुप लिए तो खाना नहीं मिलेगा। दीदी भूख लगी है, खाना तो खाऊंगी, समझाया। तो दीदी बोली आज मूंगफली खाना, खाना नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं कि खाना नहीं मिलता था, ऐसा नहीं, दीदी हंसते थे, हंसी हंसी में बोलते थे ताकि कल ये रहे। पर फिर दीदी का एक और भी बात बहुत अच्छी थी कि जिस दिन उमंग से आकर 5-6 ग्रुप ले लिए, 7 ग्रुप्स में दीदी प्राइज देती थी, 7 ग्रुप लिए तो आज आपको प्राइज मिलेगी। तो दीदी हाथ में कोई ना कोई चीज, छोटी से छोटी, हम बच्चे थे, बच्चों का प्यार तो छोटी छोटी बॉल हो गया, गुड़िया हो गई, यही चीज होती है। तो दीदी ऐसे कोई ना कोई खिलौना दे देती थी और बस उसी खुशी में कि दीदी मुझे कोई ना कोई गेम, कोई खिलौना देगी, कल और ज्यादा समझा के आएंगे। तो इस हिसाब से दीदी ने एक तरह से हमें हर बात सिखाई। मैंने बताया ना, दीदी के पास तो मैं इधर 5-6 साल से रहती रहती थी ना, यही रहती थी। पूरे साल में 3-4 मास में घर में मधुबन में ही रहती थी, 2.5 मास गर्मियों की छुट्टियां, 1 मास सर्दियों की छुट्टियां, 10-15 दिन बीच में, ये फिक्स था प्रोग्राम। तो इस हिसाब से हमने मधुबन में अपने बड़ों से कैसे अपने आप को ज्ञान युग में बिजी करना है ये भी सीखा, कैसे बिजी करना है। हालांकि थे बच्चे, लेकिन सुबह की क्लास में दीदी अपने साथ लेके जाएगी, फिर दिन में दीदी 10 बजे बुलाती थी, और जब 10 बजे बुलाती थी तो कुछ न कुछ पूछती थी, मुरली की पॉइंट ही पूछेंगे, और वो याद करके आना पड़ता था क्योंकि पूछेंगे। और दीदी बहुत जल्दी हर बात के लिए बोलती थी फेल फेल, वो सुनना अच्छा नहीं लगता था, ये क्या आज का टाइटल मिल गया फेल, वो नहीं चाहिए। और जब मुरली की पॉइंट सुना देते थे दीदी को, तो दीदी बोलती थी आज तो बाबा की बच्ची लगती है, आज तो बाबा की बुलबुल लगती है, आज तो बाबा की है। और जिस दिन फेल, माया का रंग आ गया फेल। तो ऐसे ऐसे शब्द दीदी बोला करती थी कि देखो माया का रंग नहीं आ जाए। पर हमने उस बचपन में अपने बड़ों की ये पालना, उसने इतना अंदर में शक्ति भी कहूं और उत्साह भी कहूं दिया, जिसके कारण ही आज हम यहां पहुंचे। मैं तो कई बार कहती हूं सबसे, शायद मुझे ये पालना न मिली होती तो हम यहां न होते, क्योंकि बचपन से ही हम यही रहे, यही देखा। कभी कभी मुझे याद आता है एक बार की बात कि यहां पर जब योग शिविर शुरू हुए थे, और योग भवन में तब योग शिविर चला करते थे, और मैं यहां छुट्टियों में होती थी तो मेरी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। तो सब बहुत हंसते थे मुझे देख करके कि छोटी सी है, हाइट भी वैसे ही कम थी तो और भी छोटे लगते थे, तो क्या ड्यूटी मिलेगी तुमको, क्या ड्यूटी करती हो वहां पर। और दीदी ने गिनती से मुझे 10 ड्यूटी दी थी कि 10 काम करने हैं रोज के, वो रोज करने। और करना क्या है, योग शिविर की सुबह क्लास शुरू होगी, उसमें लाइट ऑन करनी है, टेप बजानी है, वो मैं ही करती थी। अच्छा, उसके बाद जो टीचर आएगी, क्लास कराएगी, वो क्लास की 2 पॉइंट्स लिख करके लेके जानी है दीदी के पास कि आज क्या सुनाया, उस टीचर ने क्या सुनाया। तो दीदी कभी कभी बहुत रमणीक तरीके से घुमा देती थी बात की, मैं कई बार बोल देती दीदी आप रोज रोज मुझे लिखने को बोलते हो, मेरा मन नहीं होता। बोलती थी ऐसा नहीं है दीदी, इसलिए बोलती है तो दीदी को मालूम पड़ेगा उस टीचर ने क्लास ठीक कराई, दीदी तुमको थोड़ी पूछती है कुछ, दीदी पूछती है मालूम तो पड़े, उसने ठीक क्लास कराई, दीदी को कैसे मालूम पड़ेगा, कौन बताएगा, तो तुम लिख के आएगी तो मालूम पड़ेगा ना। तो दीदी घुमा के प्रेरणा देते थे कि नहीं लिखना है। और फिर उसके बाद यहां से, उस समय तो यहां से पांडव भवन से नाश्ता लेके जाना पड़ता था, वो डोलू होते थे और हमारे बाबा राम भाई, तुम साथ साथ लेकर के जाते थे, फिर उनको वो नाश्ता कराना है, नाश्ता कराने के बाद फिर उनको क्लास में सबको बिठाना है। तो इस तरह से दीदी ने सारे दिन की दिनचर्या सेट कर रखी थी। तो सारा दिन योग शिविर शुरू हुए तो सारा दिन उसमें बिजी हो गए, उसमें 3-4 क्लासेस तो होती होती थी, और होती होती थी तो उसमें से कुछ लिखना है, कुछ सुनाना है। फिर कभी कभी दीदी दूसरे ढंग से, क्योंकि बच्चों को तो कुछ नया चाहिए, हर दिन नया चाहिए, तो दीदी बोलती थी अच्छा आज ना मुरली की पॉइंट या क्लास की पॉइंट नहीं सुनेगी दीदी, लेकिन तुम ना बताओ उसने किस ढंग से बैठ के सुनाया, एक्टिंग करके बताओ, उनकी एक्टिंग करो। अब एक्टिंग भी करनी तो फीड होगा ना। और ये शुरू से, मतलब ये मेरे अंदर शुरू से था भी, हर एक की नकल उतारना। तो दीदी उसमें और ज्यादा, अच्छा नकल निकालो उसकी, निकाल, क्योंकि मालूम था कि मैं पहले ही निकालती बहुत थी। तो निकालो कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे सुनाते, पॉइंट पूरी सुनाओ नकल करके। अब वो अंदर में फीड हो जाता था। फिर बाद में जब देख लेती थी दीदी सब कुछ, वो तो हंसी में सारी बात हो गई, उसके बाद दीदी बोलती थी आज जो उन्होंने सुनाया ना और तुमने हमें दिखाया, करके दिखाया, ये बात बहुत अच्छी थी, दीदी को बहुत अच्छी लगी। अब दीदी को अच्छी लगी तो तुमको भी अच्छी लगी ना, दीदी को पसंद आई तो तुमको भी अच्छी लगी, तुमने तो एक्टिंग की तब तुमको तो पहले ही अच्छी लगी थी, तब तो तुमने एक्टिंग की। अब ये बात ना कल सुबह तुम करना, इसको अभ्यास करना। फिर जो वो योग शिविर वाले ना उनको बताना कि कितना सहज होता है करने में। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हमने सीखी, और ये छोटी छोटी बातें उस समय का तो खेल था, लेकिन उसके इम्प्रिंट्स जैसे पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। और जैसे ही फिर इम्प्रिंट्स में कोई भी चीज आ जाती है, अंदर में छपती जाती है, तो उसका काम तो फिर ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक। तो दीदी को बहुत बड़ी बात अंदर में ये पक्का था कि इसको बाबा का बनाना है, बनाना ही है। तो हमेशा दीदी कहा करती थी तुम बाबा की बनेगी ना, तो मैं हंस देती थी क्योंकि ये सोचती थी क्या बोलूं मैं। तो एक दिन यहीं पर क्लास में, रात्रि क्लास में दीदी बैठे हुए थे, क्लास चल रही थी, और दीदी अचानक से बीच में बोले अच्छा क्लास पूरी हो गई ना, हमने सबने सुन ली, अब ये सुनाएगी, कल सुबह सुनाएगी कि मैं बाबा का बनूंगी तो क्या करूंगी। बाबा का बन के, जैसे औरों को कई बार बच्चों को नहीं देते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो क्या करूंगा, या मैं इस पोजीशन डॉक्टर बनूंगी तो क्या करूंगी, तो मैं बाबा का बनूंगी तो क्या करूंगी, तो ऐसे सुनाओ। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है क्या करूंगी, बड़े हो गए क्या करूंगी, मुझे नहीं पता है। तो दीदी ने ही मुझे पॉइंट सुनाई, ये 4 बातें सुनाना, ऐसे ऐसे सुनाना, सब सुनेंगे तो सोचेंगे अच्छा ये ऐसा बोलते तो हमें कैसे करना है, तो तुम तो सबको प्रेरणा दे देगी। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरह से धीरे धीरे भाषण करना भी सिखाया इस तरीके से। पर फिर भी बार बार ये कहूंगी कि कोई भी बात उन्होंने जो सिखाई, सब मर्यादाओं की बातें खेल खेल में सिखाई, खेल खेल में, हंसते हंसते सिखाई, जो पहले एहसास नहीं हुई थी कि ज्ञान में कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे करना है। आजकल तो हम सोचते हैं ना कैसे, उस समय तो सोचा ही नहीं, जो बोलते थे वो करते गए करते गए। एक बात मुझे और याद आती है, दीदी ने मुझसे पूछा अच्छा खुश रहना है, तो मैं तो बहुत हंसती बहुत थी, पहले ही खुश रहती थी, बहुत हंसती थी। तो दीदी पूछती खुश रहना, तो हंस दिया। तो दीदी बोलते हैं ब्राह्मण जीवन है ना खुश रहने के लिए, अब खुश रहने के लिए है तुम तो हंसती है, हंसने को खुश रहना नहीं कहते हैं। अब ये तो पता ही नहीं था, अंतर भी नहीं पता था हंसना और खुश रहना क्या होता है, ये अंतर भी नहीं पता था। तब दीदी ने बोला, खुश रहना माना ही वो है जिसमें जो सुबह योग करता है, मुरली सुनता है रोज, जो सुबह योग करता है रोज मुरली सुनता है वो खुश रहता है। मैंने कहा सुबह सुबह तो नींद आती है, अमृत वेला, सुबह सुबह तो नींद आती है। दीदी बोलती थी नहीं, अमृत वेला जाना है। और मैं बोलती थी मैं बहुतों को देखती हूँ, ये मैं कई बार दीदी को बोलती थी, मैं बहुतों को देखती हूँ वो यूं यूं सोते हैं, तो इससे तो बिस्तर पे सोने दो वो अच्छा है। मैं बिस्तर पे सोती हूँ वो वहां सोते हैं, सोते वो भी है। लेकिन दीदी ने कहा नहीं, उनको तुम क्यों देखती है, बच्चों को तो एक बार जागने में नींद आती नहीं है तो तुमको नहीं आएगी। बच्चों को एक बार जाग जाते हैं बच्चे तो उनको नींद नहीं आती है, और ये जो सोते हैं ना ये अंदर से खुश नहीं है इसलिए सोते हैं, तुम खुश है ना तो तुमको नींद नहीं आएगी। अब दीदी की बातों का कोई जवाब नहीं होता था, तो दीदी बोलती अच्छा दीदी कल तुम्हें उठाएगी, तुम योग में चलोगी ना। अब और फंस गए कि योग में उठाएगी, तो दीदी के पास लच्छू दादी हमारी होती थी, वो मुझे आते जाते उठा देती थी। अब उठाएंगे तो जाना पड़ेगा, और जाना पड़ता था तो दीदी की कुर्सी के नीचे ही उधर ही बिल्कुल बैठना होता था, वहां तो सो भी नहीं सकते। इस तरह से अमृत वेले का भी उन्होंने अभ्यास डाला, और धीरे धीरे अमृत वेले का महत्व पक्का कराया, अमृत वेला क्या होता है धीरे धीरे। तो मैं तो ये जानती हूं या ये कहूंगी कि ज्ञान के नियम कहूं, ज्ञान की मर्यादाएं कहूं, ज्ञान की गहराई कहूं, योग की बात कहूं, हमने तो यहां पर ही अपने बड़ों से खेल खेल में ही सीखी। लेकिन हां ये जरूर है कि वो जो खेल खेल में हमने बातें सीखी वो ऐसी छपी अंदर में जो आज तक पक्की हो गई, वो पक्की हो गई। चाहे वो मुरली रिपीट करने की बात थी, कोई भी बात पक्की हो गई। तो जब हम मुरली से सुनकर भी आते थे तो उसके बाद भी दीदी ने एक नियम हमसे धीरे 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 करके बनवाया। जब मैं समझते 10-11 साल की उम्र थी कि मुरली सुन ली, सुनने के बाद नाश्ता तो तब करने जाना है जब मुरली जो सुनी है, जो मुरली की डायरी में लिखा है उसको देखे बिना चार बातें लिखनी है। मुरली सुनी, आपने डायरी में लिखी, उसको देखना नहीं है लेकिन उसके अलावा चार बातें लिखनी है। तो कितनी याद है आपको, वो चार बातें लिखो। अब ये मनन करने की विधि वहां से शुरू हुई, ये ज्ञान का मनन क्या होता है। तो अब जो लिखा, फिर धीरे धीरे अब जो लिखा उसको अपने आप समझाओ। कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, वो आप 10 लाइनों में 15 लाइन में लिखो, जो भी आपने लिखा 10-15 लाइन में स्पष्ट करके लिखो। तो इस तरह से ये भी एक तरह से अंदर ही अंदर मनन का अभ्यास, चिंतन का अभ्यास, जो बाबा कहते हैं हमारे अंदर ये संस्कार पक्का होता जाए, ज्ञान और योग का संस्कार पक्का हो। और पक्का जैसे कहा जाता उस उम्र में तो बहुत जल्दी होता, बचपन की उम्र में बहुत जल्दी होता। तो दीदी एक एक बात सिखाती, फिर जब मैं वापस जब लौटती थी अपने घर में तो एक होमवर्क मुझे मिलता था मधुबन से। और होमवर्क क्या होता था आप सोचेंगे, होमवर्क क्या होता था? घर में जाएंगे, मुरली ऐसे तो चार बार तो नहीं सुनेंगे, चार बार तो क्लास नहीं करेंगे, सुबह और रात्रि क्लास दो बार भी नहीं होगी। लेकिन होमवर्क क्या होता था कि घर में जब आप बैठोगे, घर में मुरली सुनोगे, क्योंकि घर में से मुरली सुनने हफ्ते में मुझे दो बार ही ले जाया जाता था, जिस दिन छुट्टी हो, संडे की छुट्टी होगी तो जाएंगे, बीच में किसी दिन शाम को फादर जाते थे तो ले जाते थे। तो इस तरह से दो बार तो पक्का कभी ना कभी ऐसे जाती थी छोटी उम्र में। तो दीदी बोलते थे, जब आप जाओगे सेंटर पे तब आप मुरली में से नोट करके आओगे जब भी, और वो जो नोट करके आओगे फिर जब जाओगे उस दिन तक रोज उसके बारे में अलग अलग तरीके से लिखना, जो नोट किया है उसको अलग अलग तरीके से लिखना, अलग अलग शब्दों में। अब ये अभ्यास ऑटोमेटिक मनन का था, जो हम समझते नहीं थे, पता नहीं था। और मुझे याद है एक बार तो मुझे दीदी ने काम दिया था कि ये सारे प्रदर्शनी के चित्र बैठ के लिखो, सारी समझानी बैठ के लिखो। मैंने कहा मुझे नहीं आती है। दीदी ने कहा तुम ग्रुप समझाती है? मैंने कहा हाँ, सिखाया दीदी नहीं था, ग्रुप समझाती है, तुम लिखो। अब क्यों लिखना है, समझाती हूँ ना, कॉपी में क्यों लिखना है? तुम जो डायरी बनाओगी ना, दीदी सेवा में लगाएगी, दूसरे को देगी, दूसरा कैसे सीखेगा? इसलिए लिखना जरूर है, तुम्हारा एक एक काम सेवा में लगना चाहिए ना। डायरी बनाओ और वो सब चित्रों पर समझानी लिखो, दीदी सेवा में लगाएगी। और मेरे को लगता था कभी कभी कि पता नहीं वो यूज हो, ऐसे ही दीदी मुझे बहलाने पर। दीदी की कभी कोई बात काटी नहीं, मुझे याद नहीं आता जीवन में जब तक दीदी के साथ रहे हमने कोई भी उनकी बात ना मानी हो, ये मुझे याद नहीं आता, याद ही नहीं है। तो एक बार हमने सवाल किया, दीदी ये कॉपी आप किसको दोगे, किसको दोगे? अरे मुट्ठी तेरे जैसे और बच्चे हैं, उनको देंगे, मुरली वो भी सीखेंगे, प्रदर्शनी समझानी सीखेंगे। इस तरह से वो कॉपी भी मेरे से भरने के बाद दीदी लेती थी, कॉपी भी ले लेते थे। और फिर किसी न किसी, माना मेरे सामने तो नहीं, फिर लच्छू पेन को दीदी बोलती थी ये कॉपी किसी को देना है ना, और उसको बताना कि देखो तुम्हारे लिए खास उससे लिखवाया है, लगेगा कि हाँ मैंने काम किया है, किसी के लिए काम किया है। और उसके फिर दीदी का ये बहुत याद रहती थी, बात छाप पड़ती थी, दीदी ने काम दिया हमने किया, फिर दीदी बोलेगी अच्छा आपने काम किया ना, दीदी की आज्ञा मानी, अब दीदी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ निकालेगी, आज गिफ्ट निकालेगी। तो बहुत इंतजार रहता था, दीदी इस बार कौन सी गिफ्ट देगी, बहुत इंतजार रहता था, दीदी आज क्या देगी, आज क्या देगी, आज क्या देगी। होती छोटी छोटी बात थी लेकिन मन में बहुत वो इंतजार, दीदी से आज गिफ्ट मिलेगा, ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ी शाबाशी मिल गई, बहुत कुछ हो गया। पर ये छोटी छोटी बात जिसके कारण मैं कहूं, जिनकी बदौलत ये छोटी छोटी बातों ने हमें यहां तक ले आया। मुझे याद आता वो दिन, आखिरी बात सुनाती, वो दिन जब 1982 की बात सुनाती हूं मैं आपको, मैं कॉलेज पढ़ाई पढ़ रही थी, दीदी ने कहा स्कूल पूरा हो गया कॉलेज, तो अब कॉलेज तो बड़े हो गए, अब तो सेंटर पर रहके पढ़ना है। मैंने दीदी से कहा मैं सेंटर पर, मेरी तो फ्रेंड्स बहुत हैं, मैं कैसे आश्रम पे रहूंगी, ये सबसे बड़ी दुविधा मेरे आगे जो आई सेंटर पर आने की, यही दुविधा थी। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत है, फ्रेंड्स बहुत है। मैं तो स्कूल में ग्रुप्स में घूमती थी, तो मैं कैसे आश्रम पे आऊंगी? तो दीदी ने कहा नहीं, तुम सेंटर पे रहो, तुम अपनी सहेलियों को भी लेके आना। मैंने कहा वो आएंगी नहीं। मैं तुम सहेलियों को लेके आना। मैंने उनको बोला नहीं दीदी, घर में आती हैं वो, मेरे पास दो दो दिन रह जाती हैं। मेरी फ्रेंड्स उस समय मेरे पास रह भी जाते थे, कभी पढ़ना होता था तो रह जाते थे। तो मेरे पास वो फ्रेंड्स रह भी जाती हैं, घर पे आती हैं, आश्रम पे कैसे आएंगी? तो दीदी ने कहा नहीं, तुम फ्रेंड्स को घर में तुम्हारे क्यों आती है? बोले मैं उनको खिलाती हूँ पिलाती हूँ, हम खेलते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अब वहां की जयपुर की तुम्हारी दीदी आएगी ना, तो उनको दीदी बोलेगी, और दो दिन बाद वो आने वाले थे। तो दीदी उनको बोलती है कि इसको आश्रम पे रखना है, यहाँ से जाने के बाद ये सेंटर पर रहेगी, जैसे कोई फाइनल प्रोग्राम देता है ना, नो चॉइस, ये यहाँ से जाने के बाद सीधा आपके पास सेंटर पर रहेगी, इसको सेंटर पर रखना है, इसकी सहेलियां आएंगी उनको समोसा बना के खिलाना है, उनकी खातरी करनी है। फिर मेरे को बोलती अब तो ठीक है, अब तुम सेंटर पर रहोगी, वो आएंगी तो ये तुम्हारी सहेलियों की खातरी करेंगे, फिर तो ठीक है। चॉइस ही नहीं थे। मुझे याद आता कि हाँ, क्योंकि दीदी की बात चाली नहीं, बस वो दिन हम सेंटर पर आ गए और आज आपके सामने हम शांति।
प्रभु का ध्यान।